ये दो चीजें सामने हैं, इसको देख के तो फिर आगे आयत को लेंगे। ये कहती हैं कि उस्ताजा जी सलाम अलैकुम, जॉब के लिए पढ़ाई करने की बात हुई, इससे तो इनकार नहीं है कि रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया, मगर असबाब तो करने होंगे। पढ़ाई करने का मतलब ये ले सकते हैं कि हम असबाब करें? जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इन असबाब पे भरोसा नहीं करना। ऑफकोर्स दुनिया में हर चीज़ जो है वो मुख्तलिफ असबाब के रास्ते से होती है। फिर ये कहती हैं कि बच्चों को फर्स्ट सेकेंड आने पर तारीफ़ करने, तोहफे देने का जिक्र आया। अगर तोहफे वगैरह देना मुनासिब नहीं तो बच्चों को मोटिवेशन कैसे दें कि वो मेहनत करें पढ़ाई में अच्छे अखलाक अपनाने के लिए? देखिए आजकल मैं एक जगह सुन रही हूँ, पेरेंटिंग ए टू जी हमारी जो सीरीज़ है, तो उसमें इस पर एक पूरी सेशन में बात हुई है कि टीन्स को कैसे मोटिवेट करें। अगर आप मुझसे पूछें, यानी मेरे जैसी सख्त माँ से पूछें, तो वो कहेगी कि बच्चों का मिशन बना दें उस पढ़ाई को। जिस बंदे को कोई काम मिशन लगता है ना, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, फर्स्ट थिंग ये है, ठीक है? अगर आपको अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि बेटा तुमने दुनिया के हर मैदान में आगे जाना है क्योंकि तुम मुसलमान हो और हमें हर जगह मुसलमानों की ज़रूरत है, ये जब उनका मिशन बन जाएगा ना, तो फिर उनको बार बार धक्के नहीं देने पड़ेंगे, एक चीज़ है। दूसरी बात यह है कि इनाम का लालच देना और फिर उनको वो काम करवाना, ये बिल्कुल फ़र्क बात है इससे कि वो कोई काम अच्छा करें खुद से अपनी मोटिवेशन अपने मिशन की रोशनी में, और फिर आप उनको अनएक्सपेक्टेडली तोहफे दें। ज़रूर तोहफे दें, लेकिन पहले से ना, ये करोगे तो ये दिला दूंगी, ये करोगे तो वो दिला दूंगी, ठीक है? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सही मानों में इस पैगाम को ले सकें। ऐसे लग रहा है मुझे सूरत अनकबूत ने तोड़ के रख दिया, वल्लाह ही मैंने बहुत दफ़ा पढ़ाई है अल्लाह की तौफीक से, लेकिन इस दफ़ा तो मेरा दिल चाह रहा है कि ये सूरत पूरी की पूरी एक नशिस्त में पढ़ाऊँ और फिर बस हम इसके ऊपर अपनी नज़रें लगा दें कि आज हमारे साथ अल्लाह का क्या मामला है। शुरू की आयात में हमने देख लिया कि किस तरह से हालात की संगीनी थी, और कोई ये कहता है कि अगर आज मुसलमानों के साथ ये हालात नहीं हैं तो ये उसकी नासमझी है, भोलपन है। आज भी वही हालात हैं, आज भी जो लोग मुसलमान होते हैं, कभी आप उनकी कहानियाँ तो पढ़ के देखें। हम लोग तो चूँकि अपने ही कामों में रहते हैं ना, तो उन्होंने अपनी अपनी हालात बताए कि किस तरह से इन मुश्किलात में पड़ते हैं। इसी तरह की एक मुश्किल जो हर इंसान को इस रास्ते में आती है, तो उसका जिक्र है अगली आयत में, आइए देखते हैं। और ये सारी आयतें एक दूसरे से रिलेटेड है, बल्कि अगर मैं ये कह दूं कि पूरी सूरत एक मोतियों की लड़ी है, तो आप इसको बात को पूरी सूरत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता खुद बखुद समझेंगे। फरमाया आयत नंबर 6, वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिह, और जो भी जिहाद करता है तो वो अपने ही फायदे के लिए जिहाद करता है, क्योंकि इन्नल्लाह लगनीयुन अनिल आलमीन, बेशक अल्लाह तो बेनियाज है जहान वालों से। जरा यहां आप शाने बेनियाजी तो नोट कीजिए। ऐसे लग रहा है कि कोई कंधे उचका रहा है कि मुझसे दीन के रास्ते की ये मुश्किलात बर्दाश्त नहीं होती, मैं इतनी कुर्बानियां नहीं दे सकती कि मैं मक्का छोड़ूं मदीना आऊं और मैं इस तरह के प्रॉब्लम सहूं। तो अल्लाह ताला कहता है इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है, हम तो नहीं कहते। यानी इससे भी ज्यादा अल्लाह सुबहान ताला का अलगनी होना पूरे कुरान में मुझे नहीं दिखा। हाँ, ये पढ़ते हुए सूरत मायदा याद आ रही है कि या अय्युल्लज़ीना आमनु मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ठीक है, इट्स फाइन, तुम में से जो अपने दीन से फिरता है तो शौक से फिरे, क्योंकि फसौ फयातिल्लाहु बिकौमिन, आयत याद आ गई होगी आपको भी, तुम जाते हो तो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहुम, याद आ रही है? टुकड़े टुकड़े बोल रही हूँ आपके लिए ताकि आप खुद भी सोचें। तो याद रखिए, हमें से कोई अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही मेहरबान, रहम करने वाली, प्यार करने वाली, तरबियत में कोई कसर ना छोड़ने वाली माँ की तरह बात पहुँचा दी। नबी आ गया आपके बीच में, आपको खुली आंखों से जन्नत दिखा दी गई। अब अगर आप इस रास्ते की मुशक्कतों से घबरा कर जिहाद छोड़ते हैं, मुश्किल छोड़ते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नो प्रॉब्लम, तुम नहीं ये काम करोगे, अल्लाह ताला किसी और से करा लेगा। क्योंकि अब आयत पूरी करेंगे, फिर इस आयत के अंदर से लफ्ज़ों को भी देखेंगे और बातों को भी देखेंगे, और वो माहौल तो आपके नज़र में हो गई जहाँ पे ये सूरत नाजिल हो रही थी। हर घर में मसला, हर घर में मुसीबत, हर घर में ऐसे लग रहा था कि दीन क्या हो गया, एक मुश्किल आ गई ज़िंदगियों में, पता नहीं कब ये मुश्किल टलेगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम थक गए हो, हबाब बिन अरत आप थक गए हैं, बिलाल अगर आप थक गए हैं तो आपकी मर्ज़ी है, फिर आप जाइए। यहाँ बताइए कौन सी मोटिवेशन है? कोई मोटिवेशन नहीं, ये तो डीमोटिवेटेड करने वाला जुमला है। अगर अगर दीन इस्लाम सहाबे कराम के रगो रेशे में ना जचा होता, अगर दीन इस्लाम की सच्चाई सहाबे कराम को रोज़े रोशन की तरह वाजे ना हो चुकी होती, वल्ला ही इस आयत को सुनकर कहते अच्छा अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, आप अकेले भुगते हैं, हमसे तो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता। कौन शोहरों को नाराज़ करे, कौन बच्चों को छोड़े, कौन किसको करे, दिस एंड दैट, आप अपना रास्ता ले, हम अपना रास्ता लेते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी है, ये जो आप करना चाहें। हमारे पास तो एक क्राइटेरियन है, अगली आयत साथ लेंगे फिर ये बात ज़्यादा समझ आएगी। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाती, और उन्होंने अमल सालेह किए, लनुकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, हम तो लाजिमन दूर कर देंगे उनकी बुराइयाँ उनसे। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, तुम्हें अल्लाह ने कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तुमने दिल की गहराइयों से कह दिया, अब क्या करो? वह अमिलुस्सालिहात। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, सूरत कहाँ नाजिल हो रही है? मक्का में। नबूवत आए हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 5 साल। यहाँ अमिलुस्सालिहात क्या हैं? क्या नमाज थी उस वक्त? रोज़ा था, हज था, ज़कात थी, उशर था, पूरी शरीयत अभी पीछे सस्पेंडेड है। तो यहाँ अमिलुस्सालिहात से फिर कौन से अमल साले मुराद हैं? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामा, यहाँ दीन के रास्ते की मुश्किलात को सहना मुराद है। याद रखिए कि जिन नमाजों और इबादात को बुनियाद बनाकर हम अपने आप को और दूसरों को नेक समझने लग जाते हैं ना, उसका मौका तो बाद में आता है। सबसे पहला जो अमल साले रब हमसे चाहता है, हाँ उसकी वो दो शर्तें हैं, इखलास और उसवे रसूल सुन्नत के मुताबिक, लेकिन यहाँ अमिलुस्सालिहात से मुराद है इस ईमान पर जम जाओ, जिहाद करो। और जब तक लफ्ज़ जिहाद को नहीं समझेंगे ना, तो हम इस आयत को भी नहीं समझ सकते। तो आइए ज़रा देखते हैं कि लफ्ज़ मन जाहदा में लफ्ज़ क्या है और ये जिहाद किस किस्म का है, और आज हम और आप इस लफ्ज़ के बारे में क्यों इतने शर्मसार हैं, हमें परेशानी किस बात की है। तो लफ्ज़ जाहदा का जो लफ्ज़ है ये तो आम है, आपको लफ्ज़ समझ आ रहा है, जीम हा दाल। इसमें लफ्ज़ जीम हा दाल इतना अहम नहीं है, लेकिन इसमें लफ्ज़ जो है ना अलिफ अहम है, जो जीम के बाद और हा से पहले लगी हुई है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अरबी ज़ुबान का एक तरीक़ाकार होता है, जैसे फा आ ला है ना, फा आइन लाम, ठीक है। अब इस फा आइन के बीच में जब अलिफ लग जाता है ना, तो इसमें म्यूचुअलिटी आ जाती है। उर्दू में समझाती हूँ तो समझेंगे। देखिए लफ्ज़ मुआशरा, मुकाबला, मनाजरा, मुबाहला, एक ही साउंड है ना, और अगर आप बाद में लिख के देखेंगे ना, तो जो पहला फा के और आइन के बीच में अलिफ लगी है, जब कोई भी लफ्ज़ इस तरह के वजन पे आता है, जिस तरह यहाँ मुजाहदा, तो इसका मतलब कि एक दूसरे के मुकाबले पे सब्र। यहाँ जिहाद से ये नहीं मुराद कि आप जाएं और किसी काफिर की गर्दन काटाएं, ये जिहाद नहीं होगा, ये जाहदा होगा। जाहदा क्या है? किसी मुखालिफ ताकत के मुकाबले में कश मकश, यानी आप लिख लें कि जहां ये अलिफ लगती है ना, वहां कश मकश, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, जिद्दोजहद। जब किसी मुखालिफ ताकत की निशानदेही ना की जाए, बल्कि सिर्फ लफ्ज़ मुजाहिदा इस्तेमाल हो, तो इसका मानी क्या होता है कि एक हमागीर और हर जहती कशमकश है, एक पत्ता है और उसको अपना आप बचाना है, और चारों तरफ से मुखालिफ हवाओं के थपेड़े हैं। मोमिन को इस दुनिया में अपने दीन पर कायम रहने में जो कशमकश करनी पड़ती है, उसको यहाँ मुजाहिदा कहा गया। उसको शैतान से भी लड़ना पड़ता है सबसे पहले, जो हर आन उसको नेकी के नुकसान से डराता और बदी के फायदे और लज्जतों का लालच। इधर से ज़रा बेचारा जान छुड़ाता है तो अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है, हर वक्त उसे अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनाने, ईगो का शिकार करने, अनापरस्त बनाने के लिए जोर लगाता है, हत्ता के फिर घर वालों से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, अपने घर से लेकर आफाक के उन तमाम इंसानों से लड़ना पड़ता है जो उसके हम ख्याल नहीं होते, जिनके नज़रियात उनसे नहीं मिलते, जिनके रुझानात इंक्लाइनेशन उससे नहीं मिलते। वो कुछ असूलों पर पाबंद होता है, लोग बेअसूल होते हैं, وہ اسلام کے مطابق ایک خاص اخلاق اپناتا ہے، لوگ اس اخلاق سے دور ہوتے ہیں، رسم و رواج معاشرے کے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے، اس کا طرز زندگی، اس کے قوانین، اس کے معاشرت کے طریقے، کیا کہو، ایک بیچارہ مومن اور کتنے ہی صدمے ہیں اس کے سر پہ، ہر طرف سے وہ تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، کوئی بھی تو اس سے خوش نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں جو مومن کو چو مکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے نا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ ہم اور آپ اس کو کیا جانیں، ہم نے تو دیندار گھروں میں آنکھ کھولی، ہم تو بون مسلم کہلاتے ہیں، ہم میں سے تو کوئی ریورٹ کھونے کا بھی دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ پوچھئے بلال سے کہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے، اور آگے ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت سعد کا، ان سے پوچھئے، یا ان سے پوچھئے پھر جو دنیا کے موڈ سکاڈ کروں سے نکل کر اب اس قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوششوں میں، حتیٰ کہ پھر اس کو ملک کے قوانین سے لڑنا پڑتا ہے، حکومت سے لڑنا پڑتا ہے، ہر اس طرز حکومت، ہر اس قانون، ہر اس لا سے لڑنا پڑتا ہے جو اس کو اللہ کی فرما برداری سے آزاد رکھ کر اپنا حکم اس پر چلانا چاہتا ہے، اور نیکی کی بجائے برائی کو پرموٹ کرنے والی ہر کمپنی، ہر طریقے، ہر چیز سے اس کو لڑنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ مجاہدہ ایک دو دن کا نہیں، یہ عمر بھر کا ہے، اور یہ دن کے چار گھنٹوں کا نہیں ہے جو آپ یہاں گزار رہے ہیں، یہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر آن ہر لمحے کا محاسبہ ہے۔ اور جن کو ایڈورس حالات ملنے پڑتے ہیں، وہ تو خوابوں میں بھی ڈر ڈر کے اٹھتے ہیں کہ شاید جو دن کی لڑائیاں تھیں وہ اب خوابوں میں بھی نہ آ گئی ہوں۔ اور یہ کسی ایک خاص فیلڈ آف لائف میں نہیں ہے، زندگی کے ہر محاذ میں جکڑنا، مومن چین سے نہیں پڑتا۔ حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے یہ دنیا کانٹوں کی سیج ہے، ایک کو مطمئن کرتا ہے، ایک طرف سود سے جان چھوڑائی تو دوسرے ادھر سے بے دینی سے نپٹا تو ادھر سے کوئی اور نکلا، ابھی ایک جاب چھوڑی کسی حرام کے شعبے میں تو دوسری طرف آ گئی، وہ تو ایسے جیسے کھانے میں سے کوئی کیڑے نکال رہا ہے، چونٹیاں نکالا، ابھی مکڑی نکلی، ابھی چونٹا نکلا، ابھی کانڈا نکلا، اور کرتے 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 جب میں نہیں کھاتا، اس کی تو بھوک مر جاتی ہے۔ مومن کی تو اس زندگی سے بھوک مری ہوتی ہے، واللہ اس کو نہیں خواہش ہوتی ہر ذائقہ چکھنے کی، ہر رنگ لینے کی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، ان الرجل لیجاہد، آدمی جہاد کرتا ہے، خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ اٹھائے۔ تو یہ مجاہدے تلواروں سے نہیں ہوتے، یہ اپنوں سے ہوتے ہیں۔ ایک قول ہے کسی کا کہ مسلمان کسی نہ کسی جہاد کے لیے تیار رہے، ورنہ تو وہ غلام بنا لیا جائے گا۔ سوچیے، سروائیول کے لیے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ غلام بنا لے جائیں گے۔ کس کے غلام؟ وہ کہتے ہیں یا تو وقت آپ کو اپنا غلام بنا لے گا، خاندان آپ کو اپنا غلام بنا لے گا، برادری، رسم و رواج، دوست، ساتھی، اور کچھ نہیں تو انسان کا اپنا نفس اس کو غلام بنا لے گا۔ میں جب یہ لفظ مجاہدہ پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں پتہ کیا تصور آتا ہے؟ ہوائی جہاز کے باہر ویسے تو کوئی جا نہیں سکتا نا، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن میں تصور میں سوچتی ہوں کہ ایک جہاز ہے اور اوپر اڑ رہا ہے، اور باہر اس کا پر، ونگس جو ہوتے ہیں، اور اس پر پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے خود کو گرنے سے بچانا ہے۔ وہ اس جہاز کے اندر سوار ہونا چاہ رہا ہے لیکن چاروں طرف کے تپیڑے، اور اس کو گرنا بھی نہیں۔ یہ ایک جو جہاز چلتا ہے، آپ کو پتہ کتنے مجاہدے سے چلتا ہے، سب جانتے ہیں تھوڑا بہت، کتنی گریویٹی سے اوپر اٹھتا ہے، اور ایک دم جو جہاز تیز ہوتا ہے جب رن وے پہ دوڑتا ہے، جان نکلتی ہے نا، وہ فرکشن ہوتی ہے، وہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ ذرا سی اس کی سپیڈ آپ کم کر دیں، وہ اس گریویٹی کی حد سے اوپر نہیں جا سکے گا۔ پھر اوپر جاتا ہے تو ہواؤں سے لڑتا ہے۔ کبھی آپ نے جہاز میں سنا ہوگا ایئر گیپس آ رہے ہیں، سیٹ بیلٹس باندھ لیں، اس وقت وہ بادلوں سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا کہ جاتے ہوئے جھٹکے نہیں لگتے، آتے ہوئے لگتے ہیں، کیونکہ جاتے ہوئے ہواؤں کے رخ پہ جا رہا تھا، لیکن واپسی پہ اپوزٹ رخ پہ۔ جب آپ ادھر سے اور ویسٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں نا، تو ہوائیں آپ کو ایسٹ کی طرف کھینچتی ہیں، ہوا ہمیشہ ادھر چلتی ہے۔ اور مجھے وہی حضرت ابراہیم کی دعا یاد آ رہی ہے کہ اللہ لوگوں کے دل اس کعبہ کی طرف جوڑ دے۔ فطری طور پہ ہوائیں جو ہے نا، وہ مشرق کی طرف آتی ہیں، جب جاتے ہیں تو ان ہواؤں سے لڑ کے ہم جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہ ہوائیں، یعنی جو بھی اس کا اپوزٹ وے کر لیجئے، تو وہ مخالفت کی وجہ سے تقریباً 1.5 گھنٹہ زیادہ لگتا ہے۔ اور آپ یہاں سے پاکستان بھی جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ضرور آدھے پونے گھنٹے کا فرق ہوگا آپ کے فلائٹ ٹائم میں، آپ چیک کیجئے گا نیکسٹ ٹائم، ایون اگر آپ ڈائریکٹ بھی آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ کمزور اعصاب والے لوگ کر سکتے ہیں، छुट्टियां करने वाले लोग ये काम कर सकते हैं? किसी बात पे कान न रखने वाले लोग इस बात से कामयाबी से गुजरेंगे, एंड पे कुरान पूरा पड़ा होगा, तस्किया नहीं होगा। मानने की आदत ही कोई नहीं है ना अंदर, एक बैठा हुआ नफ्स जिसको मानते हैं, है एक मुआशरा जिससे डरते हैं, अल्लाह को तो राजी कर ही लेंगे। तो बहुत ज़रूरत है इस मुजाहिदे के लिए खुद को तैयार करने की। पिछली आयत से तो जोड़ के देखिए, ये अल्लाह से मिलने की तैयारी है। मन हब्ब लिक़ा अल्लाह या हब्ब अल्लाह लिक़ा अहु, जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे मिलने का इंतज़ार कर रहा है, अल्लाह भी तो उसका राह देख रहा है। मोमिन इस दुनिया का सताया हुआ होता है और अल्लाह उसके लिए फरोहम व रईहानम व जन्नातुन नईम, अल्लाह फूलों के गुलदस्ते दे के भेजता है, जाओ मेरा मोमिन आ रहा है, फरिश्तों जाओ तुम इसका इस्तकबाल करो, तुम सब जाओ एयरपोर्ट पर, एक ना जाए। जमीन से आसमान तक के फरिश्ते मोमिन की रूह को लेने के लिए आते हैं। और हदीस में आता है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो उसका जिस्म जब खाली होता है बुत की तरह और उसकी रूह जाती है, तो बाज फिर जब उसको जन्नत में ले जाकर उसको दूसरों से मिलाना चाहते हैं तो बाज रूहें जल्दी जल्दी उससे पूछती हैं, क्या हाल है फलां, कैसा है फलां, क्या कर रहा है? तो कहा जाता है जरा सब्र करो, ये बड़ी मेहनतों से निकल के आया है, जरा इसको आराम तो करने दो। मोमिन तो इस दुनिया से वल्लाही ऐसे जाता है, ऐसे जाता है कि एक लंबा सांस लेके कह के अच्छा ये भी मंजिल गुजर गई, उसको चैन नहीं आता। क्यों? हज़रत अबू बकर और उमर और उस्मान और मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे लोग आखिरी दम तक जिंदगी के रोते ही जाते थे, ये मुजाहिदे थे। कहाँ बैठे, कहाँ है जन्नत का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में, कहाँ हूँ मैं अशरा मुबशरा में से, कहाँ हूँ मैं बदरी साहबा में से, कहाँ हूँ मैं साहबे बैतर रजवान में से। कोई एक छोटा सा ख्वाब भी आ जाए तो हम तो उस पर बड़ा मान करते हैं जन्नत ही हूँ, ख्वाब आने शुरू हो गए हैं, बात एक नहीं मान के देते। ये थी वो तरबियत जो अल्लाह ने सहाबा की। और फिर ऐसे लोग जब अल्लाह से मिलना चाहेंगे तो उसके मुताबिक तैयारी करते हैं, जहनी जिस्मानी हाल हुलिये के अतबार से। फिर आप देखिए, आप किसी को भी मिलते हैं ना तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं उस चीज़ के लिए, आप कहते हैं नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे उधर जाना है। जैसी जगह पर जाते हैं वैसी तैयारियाँ होती हैं। तो क्या मैं अल्लाह से मिलने को तैयार हूँ? एक बच्ची को शोहर के पास भेजना होता है ना, साल हर साल तैयारियां करते हैं हम, जो मुलाकात जितनी अहम होती है उसकी तैयारी भी उतनी अहम होती है। क्या मैं अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हूँ? उसके लिए तो मन्नतुल्लाह बिकल्बिन सलीम, कल्बे सलीम लेके आना पड़ता है। ये जो मुजाहिद है ना, इन मुजाहिदों के जरिए से दिल से वो सारा खोट खपट निकल जाता है। जैसे स्क्वीज करें तो सब गंदी चीज़ें निकल जाती हैं ना स्पंज में से, फिर पानी के अंदर रखेंगे तो साफ हो जाएगा दोबारा। ये सारी कोशिशों में लोग हमारे ऊपर एहसान करते हैं, हम पे गम डाल के वो हमें पाक करते हैं। और जब एक इंसान इस तरह से पाक होता है, जमता है जमता है, तो फिर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ समंदर होता है। फिर वो खैरख्वाह बनता है, फिर वो सिंसियर होता है, लोगों को नहीं समझ आता उसके लिए संजीदा होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो दिन जिसके बारे में अल्लाह ने कह दिया कि यौम ला यन्फउ मालुन वला बनून इल्ला मन्नतल्लाह बिकल्बिन सलीम। फिर वो लोगों के बुरे इंजाम से डरता है, एक तरफ अल्लाह से मिलने का शौक और दूसरा लोगों की बेरुही का शौक। आप देखिए कि कहीं से भी कोई पलट के आता है ना तो लोग कहते हैं क्या गिफ्ट्स लाए हैं, बच्चे खुद ही पास आ जाते हैं क्या लाए हैं, और खुद भी इंसान निकाल के दिखाता है कि ये लाया वो लाया। बाज अब अच्छे गिफ्ट्स उनको और रैप करना चाहते हैं। अगर कभी कोई सोचे कि आप उसके लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट लाएं और अंदर से ख़राब चीज़ निकले, टूटी हुई चीज़ निकले, आप सोचिए जब हम अल्लाह के सामने जाएंगे तो क्या हमारी ये चीज़ें जो हमने अल्लाह के लिए दीन के नाम पे अपनी ज़िंदगी में शामिल की हैं, क्या वो इस काबिल हैं? दूसरों के सामने आना होता है ना, सजाते हैं, मेकअप करते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। अल्लाह के सामने किस रंग में आएंगे वो तुम्हारे अंदर और बाहर को जानता है। वहाँ किस मेकअप की ज़रूरत है, वहाँ अंदर की सफाइयों की ज़रूरत है। जिससे जितनी कुर्बत की मुलाकात होती है उतनी डीप डाउन सफाई करते हैं ना। अल्लाह ताला से जिसने मिलना होता है वो तो अपने आप को परख के रखता है, वो कहता है मुझे मांझो, मुझे रगड़ो, मेरे ऊपर कुछ सख्त हाथ फेरो ताकि जो काम होना है कल वो आज हो जाए। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिहाद और मुजाहिदे कब्रों में भी करने हैं जी, रिवायत से मिलता है, पुलसरात पर हमारे मुजाहिदे होने हैं, कुछ को तो जहन्नुम में गिरा के उनको पाक किया जाएगा। जिसने खुद जिंदगी में ये सब कुछ कर लिया अल्लाह ताला उसके लिए आगे जाके आसानियां कर देगा। क्योंकि जब हम अल्लाह के बनते हैं ना तो लोग छुटते हैं, लोगों की राय हमारे बारे में बदलती है, कुछ होगा, कुछ गलत काम किया, दिस एंड दैट, और ये सारे काम करते करते हम फिर अपने आप को मुजरिम समझने लगते हैं, हम कहते हैं कुछ गलती है। तो जब अल्लाह के लिए किसी काम के करने का यकीन होगा ना, तो फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा। आप देखिए कि दुनिया में अगर कोई किसी की वजह से आजमाया जाए, मसलन अगर आपने एक बात सुनी होगी कि डॉक्टर्स गलती कर दें कोई, तो लोग उन पर सू कर देते हैं, ऐसे ना? इसी तरह कनाडा के एक डॉक्टर का किसी से सुना कि किसी ने डॉक्टर पे सू किया और डॉक्टर को $30 मिलियन देने पड़े इसको। शायद उसकी दो जिंदगियों की कमाई भी $30 मिलियन नहीं होगी, सिर्फ इस एक गलती में उसको दिया। दुनिया में कोई सू कर दे तो आप $30 मिलियन कैसे दें? तो अगर क्यामत के दिन लोगों ने हम पे सू कर दिया, फिर क्या करेंगे? क्या अल्लाह ये मुझे नहीं बताते थे? अल्लाह ये खुद नेक बनते थे, दिन रात सुबह शाम, बस सिर्फ इस डर से नहीं बताते थे कि नहीं फिर मुजाहिदा करना पड़ेगा, फिर लोग माइंड करेंगे ना, तो वो तो वैसे भी करेंगे। अगली आयतों में आप पढ़ेंगे हजरत साद की माँ ने बहुत माइंड किया था, तो उनको अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि नहीं चलो माँ है तो छोड़ दो, मान लो ना इनकी बातें, नहीं मानना पड़ेगा, मानना नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की कि हम अपने आप को चेक करें, हम कहाँ खड़े हैं, और हम के लफ्ज़ को मैं में बदल दें, क्योंकि ये जो मैं है ना, ये हमें किसी जगह का नहीं छोड़ती, हम इसी मैं के हाथों मारे हुए हैं। वल्लाही मुझे तो लगता है कि हम अल्लाह सुबहाना ताला से भी कुछ इसी किस्म के रवैये इख्तियार करते हैं, देखेंगे जो होगा कर लेंगे। तो अल्लाह ताला की जरा धमकियां सुन लें कि नहीं करते, मोस्ट वेलकम, ना करो, इन्नल्लाह गनीयुन, अल्लाह तुमसे इस मुजाहदे का मुतालबा इसलिए तो नहीं कर रहा कि इसको अपनी खुदाई कायम रखने के लिए तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत है, और अगर तुम लोगों से अल्लाह के लिए नहीं लड़ते तो अल्लाह की खुदाई नहीं चलेगी, बल्कि वो तुम्हें इस कश्मकश में इसलिए मुबतला करता है कि ये तुम्हारी तरक्की का जीना है, ये रास्ता है, इसी रास्ते से तुम बदी और गुमराहियों के चक्रों से निकलकर नेकी और सच्चाई की राह पर चलोगे, इससे तुम्हें ताकत पैदा होगी और तुम दुनिया में खैर और इस्लाह का झंडा उठाओगे और आखिरत में अल्लाह की जन्नत के हकदार बनोगे। तो तुम अल्लाह पे एहसान ना जतलाओ, तुम ये लड़ाई लड़कर अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करोगे, अपना ही भला करोगे, जो करता है वो अपने लिए करता है। ज़रा लिस्ट तो देखिए कि अल्लाह ताला उसके लिए तैयारियां क्या कर रहा है, और आप देखिए कि यहाँ जो अंदाज है ना, गनीयुन अनिल आलमीन, लगा है ना कि एकदम अल्लाह ने कह दिया है। और अगर आप आगे जाके देखेंगे सूरत हुजरात की आयत 17 में बिल्कुल यही बात नबी सल्लम के लिए भी कही गई, अरब जो थे वो बड़े एहसान जतलाते थे, शुक्र नहीं करते हैं मुसलमान हो गए, और आके कहते थे हम तो मोमिन हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं यमुन्नून अलैका अन अस्लमो, ए नबी ये लोग आप पर एहसान जतलाते हैं कि ये मुसलमान हो गए, कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम, मेरे पर अपने इस्लाम का कोई एहसान ना जतलाओ, बलिल्लाहु यमुन्नू अलैकुम, बल्कि ये तो अल्लाह का एहसान है तुम पर, क्या अन हदाकुम लिल ईमान, कि उसने तुमको ईमान की राह दिखा दी, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने इस दावे में सच्चे हो। और फारसी का एक शेर है कि तुम बादशाह पर एहसान मत धरो कि तुम इसकी खिदमत कर रहे हो, बल्कि तुम इस सिलसिले में बादशाह का एहसान पहचानो कि इसने तुम्हें अपनी खिदमत का मौका दिया। क्या बादशाह अपनी खिदमत हर एक से करा लेते हैं? क्या हर एक बादशाह का पर्सनल सेक्रेटरी हो सकता है? और क्या दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं कि हर एक को जाने देते हैं अपने घरों में? तुम तो शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने काम में लगा लिया, अल्लाह तो अपना काम हर एक से नहीं लेता। अब अगली आयत में देखिए जरा क्या दिलजोई का अंदाज है, पहले तरहीब फिर तरगीब यहां फिर दिखेगा, रगबतें खौफ, और हमारे दिलों की भी यही कैफियात होती हैं, सच्ची मानते हैं हम सब इंसान, हम थक जाते हैं ना, थोड़ा सा पीछे होने लगते हैं, फिर अल्लाह में पुशअप देता है, फिर हम कहते हैं नहीं छोड़ो, नुकसान किसका, कब्र में तो खुद ही जाना है, जहन्नुम में चली गई तो खुद ही चलना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम ये फ्रिक्शन बर्दाश्त कर लोगे, ये तल्ख नवाई चमन में मेरी गवारा कर, क्योंकि ये जहर भी कभी कारे तरियाकी करेगा, तो काब तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, अब इस लिस्ट को भी उंगलियों पर गिनिएगा, वल्लज़ी आमनू वामिलु सालिहात, जो ईमान लाकर अमल सालेह करें, ईमान के तकाजों को पूरा करें, अल्लाह के रास्ते में आने वाली सारी तकलीफों पर जम जाएं, लनुकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, पहला अल्लाह का वादा, हम जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे। इसके फिर वही दो मानी है, पीछे भी याद गुजरी है। पहली बात, उनके पिछले गुनाहों को माफ कर देंगे, ठीक है, और उसकी ख्यालात पाक हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि उसके दिल से बुराइयों की मोहब्बत ही निकाल देंगे। नंबर एक, ईमान लाने से पहले के गुनाह माफ। दूसरी बात है कि इंसान बशरी तकाजों से अगर कोई खताएं कर भी लेगा तो अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। और तीसरी बात है कि ईमान और अमल सालेह की जिंदगी इख्तियार करने से इंसान के नफ्स की इस्लाह आप से आप होगी और उसकी कमजोरियां दूर होंगी। आप देखिए इसके बाद जो बात है वो इससे भी बड़ी खूबी की, और वो क्या है, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, और हम लाजिमन उनको बेहतरीन बदला देंगे इनके अमाल का। आप देख रहे हैं नून शद, अगर आप देखें तो लाम और शद वाले नून का कसरत से इस सूरत में जिक्र है। शिद्दत, शिद्दत, जैसी हालात में तलखी थी ना, शिद्दत थी, वैसी अल्लाह के इन अल्फाज में दिखती है। इंतहाई ताकीद का अंदाज, आयत 3 में दो बार यही ताकीद बयान की, वलयालमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदकू वलयालमन्नल काज़िबीन। तो यहां से आप इसकी इंटेंसिटी को फील करें। अब सवाल पैदा होता है कि अहसन अल्लज़ी कानू यअमलून ये क्या है। आप देखिए कि इंसान जब भी काम करता है ना तो एक जैसा नहीं करता। हम इवन रोज खाना पकाते हैं, हम चाहे एक ही तरकीब से पकाएं लेकिन हर दफ़ा खाना एक जैसा नहीं पकता। कभी पिज़्ज़ा भूल जाता है, कभी नहीं भूलता, कभी केक बहुत सॉफ्ट बनता है, कभी नहीं बनता। हालांकि सारी वही चीज़ें होती हैं, वक्त हालात की बात होती है। इसी तरह जो हम नेकियां करते हैं ना, उसमें भी हर मौके पे मुख्तलिफ कैफियत होती है। दुनिया में क्या होता है, किसी पेपर में आपके 10 नंबर आए तो किसी में आपके 15 आए, साल के बाद जब आपका एंड पे रिजल्ट बनाए तो 10 और 15 की एवरेज निकाली, तकरीबन आपको 12% या 12 पे कर दिया जाएगा, ये जो भी उसके बीच का रास्ता होता है। यहाँ अल्लाह ताला की सुन्नत देखिए कि वो अहसन के दर्जे पे ले जाएगा। पीछे भी आपको ये बात समझाई थी, कोई एक ऐसी नमाज के जिसमें वाकई कान न कतराहू वाली कैफियत हो गई, उस दिन तो ऐसे लगा कि बस आज तो सामने रब खड़ा है और मैं उसके साथ लिपट जाऊं और उसको प्यार कर लूं। जैसे एक मौके पे आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे तो आपने दौरान नमाज दो कदम आगे कर दिए, ऐसे जैसे झपटते हैं। जब सलाम फेरा तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी आज अनयूजुअल बात हुई आपके साथ, हमने पहले तो ऐसे कभी नहीं देखा। तो आपने फरमाया, हाँ नमाज के दौरान जन्नत के अंगूर मेरे इतने करीब कर दिए गए थे कि मैंने चाहा कि उसको लिपट के पकड़ लूं। कन्ना हतरा हो, जब रब दिखता है तो उसकी जन्नत नहीं दिखती, ये दूर दिख रही है तभी कुर्बानियां मुश्किल हैं। तू बचा बचा के न रख किसे कि तेरा आईना वो आईना है, जो शिकस्त हो तो अजीज है निगाह आना सास में। तो ऐसी कोई दो चार नमाजें पढ़ ले, कोई कोशिश करके हर गम फिक्र से आजाद करके, ताकि कल अल्लाह को कहें कि अल्लाह अपना वादा पूरा कर, और अहसन अल्लज़ी कानू यअमलून मेरी रोज की टूटी फूटी नमाजों को से एक नमाज जैसा कर दे। जो मैं बच्चों के बीच में पढ़ती थी, जो घर वालों के लिए पढ़ती थी बीच में रहकर, दिल कहीं दिमाग कहीं इधर और उधर, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सच है कि नहीं? बस दफा इंसान अपनी जिंदगी में नमाजें भी पढ़ रहा होता है लेकिन अहसन नहीं होती। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन अलामा इकबाल के काफ़ी अशार सुने हुए हैं, लेकिन कल मुझे किसी ने चंद अशार भेजे, मैंने पहले नहीं सुने थे, फर्स्ट टाइम सुने हैं, मैं आपसे शेयर करती हूँ। और आप इस वक्त इसको अहसन अल्लज़ी कानू यअमलून की रोशनी में सुने और पूछें कि क्या मेरे दिल की तो ये कैफियत नहीं, और अगर ऐसी दिखे तो फिर इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश कर ले। अल्लाह की ज़ात नुक्ता नवाज है, कहते हैं कि सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। अब ये लफ्ज़ इश्क मुझे नहीं पसंद लेकिन उनको पसंद था, अल्लाह की मोहब्बत के लिए ये लफ्ज़ इश्क बोलते थे। कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत हो ना फिर इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। यानी जब अल्लाह की मोहब्बत ना हो तो सजदों में भी हमें क्या याद आ रहा होता है, दुनिया। लोग कहते हैं कि बस फ़र्ज अदा करना है, फ़र्ज़ पढ़ लें, फ़र्ज़ पढ़ लें, फ़र्ज़ हो रहा है, कज़ा हो रहा है, वक्त कम हो रहा है, ये कहते हैं ना। ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से, यानी बाज दफा फर्ज पढ़ने ऐसे लग रहा है कि अल्लाह से कोई कर्ज लिया हो बस वो जल्दी से वापस कर रहे हैं। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें ए इकबाल, कहते हैं कि कई नमाजें पढ़ने के बावजूद तू काफिर ना हो जा तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। बताइए, क्या मेरी और आपकी नमाज का यह हाल तो नहीं है? और सच माने अक्सर ऐसी ही नमाजें होती हैं। जो आने वाला इवेंट है वो, या गुजरा हुआ कोई गम सदमा, वो मौजूद है। गम पिछले याद आते हैं, आपको पता है, नमाजों में, और खुशियां आने वाली याद आती हैं, तसव्वुरों में कहीं और पहुंचे होते हैं। आप आजमा के देखें, ये जुमला मैंने बहुत सोच के बोला है। कोई गम लगा होगा ना, दुख तकलीफ है, तो नमाज में आप उसकी वजह से रो रहे हैं, तब डिस्ट्रेक्शन हो जाएगी। और कोई आने वाला दिन है, खुशियों के कोई दिन करीब आ रहे हैं, तो उसके ही ख्यालों में खोए हैं, रब किधर है। तखसन अल्लज़ी कानू यअमलून, अल्लाह की सुन्नत है, नेकियों के मामले में अल्लाह ताला बड़ा गनी है, बेनियाज, फराख दस्त, अलवासे है। कैसे? चंद आयतें नोट करें। सूरत अल अनाम आयत 160, मन जा बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, जो नेकी लेकर आएगा इसको इससे 10 गुना अजर दिया जाएगा, ओ कम से कम 10। फिर सूरत कसस आयत 84, मन जा बिल हसनति फलहु खैरु मिनहा, जो नेकी लेकर आएगा उसको इससे बेहतर अजर दिया जाएगा। और सूरत निसा आयत 40, इन्ना अल्लाह ला यज़लिमु मिसक़ाला ज़र्रतिन, और अल्लाह तो जुल्म नहीं करता जर्रे बराबर। वइन तकु हसनतैन युदाइफ़हा, अगर नेकी हो तो उसको कई गुना बढ़ा देता है। कितना मेहरबान रब है। मैं सोचती हूँ कि कल अगर हम अगर अपने बारे में ये सोचते हैं ना कि जाना ही आग में है, कोई नेकी कबूल ही नहीं होनी, तो ये भी हम अल्लाह ताला पर बदगुमानी करते हैं। इन आयतों को पढ़ के यकीन आता है अल्लाह ने बहुत सारों को बख्श देना है, हम जैसे गुनाहगारों को भी शायद अल्लाह अपनी इन सिफात की वजह से बख्श देगा। है ही बड़ा फराख दिल। देखिए ना, कुछ लोग हैं उनको 5 पाउंड खर्च करने भी एक तकलीफ लगते हैं, होने ना होने एक अलग इशू होता है, हो के खर्च करने और खासतौर पर दूसरे पे खर्च करने या अल्लाह पे खर्च करने अल्लाह के रास्ते में, ये एक डिफरेंट कहानी है। वो अगर वाकई किसी वक्त 5.5 पाउंड लगा दें तो या सन अल्लज़ी कानू या मलून, क्योंकि वो उनका दिल ही ऐसा है, कोई बुरी बात भी नहीं है, अगर हराम नहीं है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बंदा जिसके लिए 5 और 50 एक बराबर है, जिसके लिए कोई खर्च करना बड़ी बात ही नहीं, पैसा उसके हाथ का मैल है, उसके लिए क्या वो 500 भी किसी पे लगा दे, समझ रहे? तो मुझे अल्लाह ताला की सिफत 500 नहीं, 5,000,000,000 से भी बड़ी लगती है, उसके लिए क्या बड़ी बात है। किसी से बात हो रही थी तो उनकी कोई घर में मेड आती है, तो किस्सा मुख्तसर जो कहानी सुना रही हूँ कि अहसन अमल कैसे अल्लाह लोगों से कराता है, कि बाद दफा मैं सोच में मुबतला हो जाती हूँ उनकी बातें सुनकर। किसी ने शेयर किया कि नॉन मुस्लिम उनकी फ्रेंड है, तो वो चाहती हैं कि वो किसी तरह स्कूल आए, क्लासेस सुने, कान में बात डले उनके, तो वो उनको बहाने बहाने बुलाती हैं। तो कोई एक फंक्शन आने वाला था, तो उसमें स्टॉलिंग होती है, वहाँ स्टॉल लगाते हैं हम लोग, और बाहर से जो आते हैं वो तकरीबन 500 से लेके जितने भी क्रोन होते हैं वो उसका एक हिसाब होता है। तो मुझे बता रही हैं, कहती हैं, आपको पता है उस्ताज़ा, फला मौके पर मैंने अपनी हिंदू दोस्त को कहा है कि तुम वो जो कपड़े लाई हुई उसका स्टॉल लगाओ स्कूल में, 500 क्रोन ही है ना, मैं दूंगी उसकी तरफ से, बस एक मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि उसका स्टॉल कहीं ऐसी बाहर जगह पे ना लगाएं जहां से कानों में आवाज ना पड़े, ऐसी जगह लगाएं कि जहां बैठ के वो सुन भी सके। ये है अहसन अल्लज़ी कानू यअमलून। उसके लिए 500 पाउंड ऐसे थे बात करते हुए जैसे 5 रुपए, क्या फर्क पड़ता है। और ये कोई पहला मौका नहीं है, 20 मौके ऐसे, और वो ऐसी है कि आजकल अपने घर में मेड को बुला रही है और शुरू का 1 घंटा फ्री बिठा के उसको शुरू से सूरह फातिहा से शुरू करा दिए कुरान। उसने पहले दिन सुना तो मुझे भेजा, उसमें उसने यही लिखा हुआ है, दीदी मैं तो सुनती ही चली गई, दीदी मुझे तो आज पता चला, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था ये वक्त रुके, मैं अब रोज सुनूंगा। वल्लाही ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आते, आग नहीं लगी अंदर अभी, अभी बेलॉस नहीं हुए, अभी अपने ही कमों से नहीं निकले। मुसीबत सबसे बड़ी हमारी ये है, हम कहते हैं खुद बड़े मजबूर हैं, हम खुद डिजर्विंग, हम तुम्हें क्या दें। हमारे तो अभी अपने ही घर में हमारा माहौल ठीक नहीं हुआ, अभी तो हमारे अपने ही मुजाहदे हैं, नहीं अभी जोके यकीन पैदा नहीं हुआ, आज तक कभी हमने वो लज़्ज़त पाई नहीं है, हमने अपने रब को आजमाया ही नहीं है। यकीन करें, सहाबा कराम वाले मीन्स, उनसे तो हमारे मीन्स अच्छे हैं, अल्लाह के नबी के हालात जो थे, जरा उनके दुख गिने, उंगलियां खत्म हो जाती हैं, नबी के दुख नहीं खत्म होते। अगला महीना आ रहा है इंशाल्लाह रबीउल अव्वल का, सुनेंगे बहुत कुछ नबी के बारे में। क्या वो हालात थे, क्या वो लोग थे, क्या कर गए दुनिया में। और ये आयतें देखिए कि अल्लाह उनको कह रहा है कि हम तुम्हें तुम्हारे आमाल की ये सजा नहीं देंगे जो तुम्हें उमैया दे रहा है। आपको तो कि हबाब बिन अरत लोहार थे, एक शख्स ने सारा दिन उनसे काम कराया या जितना भी कराया, जब करके अब काम किया लोहार बनना और गर्मी में और लोहा कूटना, पिघला हुआ लोहा आसान काम तो नहीं था। जो उसका काम पूरा हुआ मजदूरी लेने गए, कहने लगा तुझे नहीं दूंगा, पहले कह कि मैं मोहम्मद का इनकार करता हूं फिर तेरी पे मिलेगी। कैन यू बिलीव, उनके माल पे जद पड़ी, उनकी कमरों पे चोटें पड़ी, उनके हाथों पे पड़ी। एक लॉन्डी थी सुनहरा नाम की, मुसलमान हुई, उनके मालिक ने उनको इतना मारा, अंधी हो गई। जब अंधी हुई तो अल्लाह देखे उसकी अकल मारी हुई है, कहता देखा तुझ पे मेरे बुतों की मार पड़ गई है। जय कोई उनकी देवी थी, उसका नाम लिया, कहने का उसकी मार पड़ी है, तू उसको बुरा कहती ना इसलिए अंधी हो गई। रात को वो रोई, अल्लाह की बंदी, अल्लाह ताला मैं ऐसी तो नहीं हूं, क्या इसकी ये बात सच है कि मैं उस देवी के बवाल में आई हूं। रोई, सुबह उठी, आंखें आ गई, कहा देखो मेरे रब ने मुझे आंखें दे दी हैं। अहसिबन्ना सयुथ्र को यकूल आमन्ना वहम ला युफ्तनून। तो याद रखिए कि जब आप अल्लाह के लिए कुछ करेंगे, अल्लाह हक नहीं रखेगा, अल्लाह छोटी छोटी नेकियों की कदर करेगा। जिन चीजों को हम फेंक देते हैं ना, अल्लाह उसकी भी कदर करता है, क्योंकि वो नुक्ता नवाज है। तो अल्लाह के नाम पे जब कोई नेकी करें, दिल खोल जाए कि मुझे यकीन है मेरा रब ये काम मेरा कबूल करेगा। शर्त एक है, ये जो मुजाहिदा है ना, मुजाहिदा सिर्फ वो करेगा जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएंगे ना, तो आपको एक बंदा एक बात पे कॉम्प्रोमाइजिंग कर देगा, शौहर एक बात दूसरी पे कर देंगे, एक छोटा बच्चा वो अपनी किसी बात पे तीसरी बात पे, सास जी आपको चौथी बात पे, और दोस्तें जी जो हैं वो आपकी छठी सातवीं पे, और आप हर दिन कॉम्प्रोमाइजिंग होते, एक दिन आएगा आप बिल्कुल बदल चुके होंगे। कुफर बहुत अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है, जिस चीज में उसको आप जगह मांगे वो दे देते, इट्स ओके इट्स ओके। इस्लाम नहीं देता, जैसे आप साफ पानी में एक कतरा भी कीचड़ का नहीं मिला सकते, और कीचड़ में आप चाहे दो बाल्टियां जमजम की भी डाल दें, वो कहेगा आने दो, वो तो पहले ही गंद है। तो जितना हक अंदर आता है उतने आप अनकॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। अल्लाह ताला हमें बस अपने ऊपर नजरें लगाने वाला बना दे। जहां भी हम देखिएगा कि इस मुजाहिदे से डरते हैं ना, उसके पीछे दुनियावी फायदा होता है। क्या था अगर थोड़ा सा कुछ कह देती, चलो क्या था थोड़ा सा मान जाती, नहीं ये था कि फिर अहसन अल्लज़ी कानू यामलून नहीं होना था। तो अल्लाह ताला यही कहते हैं, वेले ना करो जो कुर्बानियां दे रहे हो अपने लिए दे रहे हो। आज अगर अपनी दुनिया में थोड़ी सी कमी कर रहे हो, तो आखिरत में बहुत बड़े बड़े घर भी तो ले रहे हो, आखिरत में बहुत कुछ मिलेगा। दुनिया में भी तो आप देखिए, घर लेते हैं तो क्या लोगों पे एहसान चढ़ाते हैं, आपको होता इतना महंगा घर लिया है, आपको होता इतनी महंगी किस्त देते हैं, भाई दे रहे हो तो खुद रह रहे हो, इंशाल्लाह रहोगे सुकून से, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अल्लाह भी यही कह रहा है, तर्स छोड़ दो। आप इस सारी आयत के आगे लिख ले कि सेल्फ पिटी का शिकार होने से बच जाओ, नहीं निपटा दीन तो फिर छोड़ दो, जाओ फिर तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम अपनी मर्जी के काम करो।
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون